हरि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना
जिन हरि कथा सुनी नहीं
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना
श्रवण रंध्र हरि भवन समाना
श्रवण रंध्र हरि भवन
जो नहीं करही राम गुण गाना
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 दीह सुदा दुर दीह समाना
दीह सुदा दुर दीह समाना
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना
जिन हरि कथा सुनी नहीं
श्रवण रंध्र एहि भवन समाना
श्रवण रंध्र एहि भवन समाना
जो नहीं करहि राम गुण गाना
जो नहीं करहि राम गुण गाना
सुदा दुर दीह समाना
सुदा दुर दीह समाना
जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया
राम झरो के बैठ के
राम झरो के बैठ के
सबका मुझ
सबका मुझरा
जैसी जिसकी चाकरी
जैसी जिसकी चाकरी
तैसा तिसे फल दे
तैसा तिसे फल दे
अब प्रभु कृपा करहु एही भांति
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 सबत भजन करहु दिन राति
सबत भजन करहु दिन राति
तुलसीदास महाराज कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र एहि भवन समाना जिन्होंने अपने कानों के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल जैसे हैं जो न करहिं राम गुण गाना जीह सोदा दुर जीह समाना जो भगवान के गुण गान नहीं करते अपने मुख से जिह्वा से उनकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा जैसी मानी जाती जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुदा दुर जीह समाना नए नहीं संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख समलेखा जिन्होंने अपने नैनों के द्वारा आंखों के द्वारा संतों का दर्शन नहीं किया उनकी आंखें मोर की पिंच की आंख जैसी मानी जाती है कुलिश कठोर निठुरस होई छाती सुनी हरि चरित्र नहीं जो हर खाती उनकी छाती उनका हृदय कुलिश है कठोर है जिनका हृदय भगवत कथा से पिघलता नहीं अथवा भगवत अमृत से भींजता नहीं चार व्यक्तियों पर भगवान जल्दी संतुष्ट होते हैं बहुत खुश राजी हो जाते हैं थोड़ी ही कमाई से ज्यादा भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं चार प्रकार की व्यक्तियों पर भगवान बहुत नाराज होते हैं चार प्रकार की व्यक्तियों पर भगवान बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं जो जुआनी में भक्ति करता है बाल्यकाल से भक्ति शुरू करता है उस पर भगवान बहुत राजी हो जाते हैं जो सूरवीर होकर भी जुलम नहीं करता, विचारवान है, उस पर भगवान राजी होते हैं। जो गरीब होकर भी सत्कर्म करता है, उस पर भगवान राजी होते हैं। जो सत्संग की शरण जाता है, उस पर भगवान जल्दी राजी होते हैं। चार व्यक्तियों पर भगवान बहुत नाराज होते और प्रकृति का कोप हो जाता है उन व्यक्तियों पर। जो धर्म के पैसे उघरा कर खा जाते हैं, उन पर भगवान और कुदरत का बड़ा कोप होता है। जो बुढ़ापे में पाप करता है, उस पर भी भगवान कुदरत का कोप हो जाता है। जो धनी होकर भी सत्कर्म में अपना धन तन का उपयोग नहीं करता, उस पर भगवान रूठ जाते। जो विद्वान होकर क्रिया भ्रष्ट है, उस पर भी भगवान नाराज होते। ये बात शास्त्र की बात है, किसने कही? ये बात उड़िया बाबा ने कही। सुनने वाले कौन है? कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जिनके चरणों में बैठकर अपना भाग्य बनाते, ऐसी आनंदमय माँ उड़िया बाबा के पास हरि कथा सुनती, हरि चर्चा करती। जैसे राम जी के आगे वशिष्ठ जी कहते हैं तो ऊंची बात होती है, जैसे अर्जुन के सामने श्री कृष्ण कहेंगे तो गीता गूंजेगी, ऐसे उत्तम प्रकार के श्रोता के आगे एकदम सूक्ष्म और उत्तम प्रकार की बात होती। बात सत्संग की तपस्या में अधिकारी खोजा जाता है। परदेश जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, बोर्डिंग पास से तब आप अमेरिका जा सकते हैं। नौकरी करना हो सरकारी तो सर्टिफिकेट चाहिए, तप करना तो शरीर सुडोल और तपस्या की क्षमता चाहिए, योग करना तो योग की विधि का ज्ञान होना चाहिए और योग के लिए कोई स्थान चाहिए, धंधा करना है तो पैसा चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, नेतागिरी करनी है तो लोगों का सपोर्ट चाहिए जयराम जी की, और फिर भी कुर्सी मिले कि न मिले, और मिली हुई कुर्सी फिर कब चली जाए कोई पता भी नहीं। कुर्सी जैसे कुर्सी का वैश्या होती है, ऐसे ही कुर्सी का कोई पता नहीं, भरोसा नहीं। लेकिन सत्संग में जो पद मिलता है, उसमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, बोर्डिंग नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोगों का मत भी नहीं चाहिए। सत्संग में केवल चार कदम चलकर पहुंच गए तो मुफ्त में सब माल मिलता है और शाश्वत की खबर देता है। भोगियों के देश में जाना हो तो दुनिया भर का पासपोर्ट, वीजा, टिकट, पैसा चाहिए। किसी नेता के घर या प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचना हो तो लागवग चाहिए, लेकिन परमात्मा के घर का अनुभव करना हो तो कोई बोर्डिंग की जरूरत नहीं, कोई वोट की जरूरत नहीं, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई लागवग की जरूरत नहीं। तैयार मंडप है, चार कदम चल के आए और हरि कथा सुनकर अपने जन्म जन्म के पाप मिटाए। नौकरी चाहिए चपरासी की तो तुम्हारी कुछ न कुछ योग्यता का प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन हरि कथा में कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कितना भी ऊंचे से ऊंचा योग्य व्यक्ति हो, उसको भी समझ में आता है पुण्य होता है, और कितना छोटे से छोटा व्यक्ति उसको भी कुछ न कुछ पुण्य होता है। छोटे से छोटा नहीं, क्रूर से क्रूर, पापी से पापी व्यक्ति हो। कल मैंने बताया था भागवत की बात, जो दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, जो गुरु पत्नी गामी, जो आतताई और महाअपराधी, ऐसे पांच प्रकार के महाअपराधी भी सत्संग से पावन हो जाते हैं। जो माता पिता को सताता है, गुरुजनों से द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रायश्चित करके अगर सत्संग में आ जाता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सत्संग वो चीज है। साधन भजन करना है तो आपके अधिकार का मुझे ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन सत्संग में अधिकारी अनाधिकारी ने जो आए वो सब यथा योग्य उनको लाभ होता है। सत्संग को कहा गया जल वृष्टि न्याय न, जैसे बरसात पड़ती है और कालू नाम की मछली के मुंह में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाए तो वह बूंद मोती बन जाएगी। अगर वो पानी किसी जगह पड़ता तो कपूर बनता, किसी जगह पड़ता तो गेहूं और बाजरा होकर उभरता है। कहीं पर डैम बनता है तो कहीं पर गंगे मात की जय, यमुने मात की जय। कहीं पर सड़कों पे करता है तो नदी नालों के द्वारा। अरे काले भमरे जैसे गंदे रोड पर भी पड़ता है तभी भी पानी अपना बरसात काम करती। सीप में तो मोती बनता है, खेतों में तो खेती हो जाता है, गन्ना बन जाता है, डैमों में तालाब बन जाता है, तालाबों में डैमों में स्टोरेज हो जाता है, नदियों में गंगा यमुना बन जाता है। लेकिन जो खेड़ी जमीन नहीं वहां भी कुछ पानी का लेवल ऊपर लाने का काम करता है बस। अरे जहां खेड़ा नहीं है, काला भमरे जैसा डामर का रोड है, वहां भी जल पड़ता है तो भले रोड तो नहीं बहता लेकिन रोड पर पड़े हुए डीजल और गोबर के दाग तो धुलने लगते। ऐसे पापी से पापी व्यक्ति, कठोर से कठोर, काले से काला हृदय भी हो, उस पर भी सत्संग की वृष्टि हो तो उसके भी पाप के दाग धुल जाते। सत्संग वो चीज है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जो मुझे प्रपन्न होता है ज्ञानवान वो बड़ा दुर्लभ है। मैं तो सुलभ हूँ अर्जुन, लेकिन मेरा अनुभव करने कराने वाले महात्मा बड़े दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों वृक्ष हैं, उनसे जंतु श्रेष्ठ है, क्योंकि वृक्ष को केवल एक जगह पर भोजन लेने की योग्यता है, ईश्वर की योग्यता उसके पास है केवल अपना भोजन चूसने का। जंतुओं में ईश्वर की दो योग्यताएं हैं कि भोजन भी ले सकते हैं और स्थलांतर भी कर सकते हैं। पक्षियों में तीन योग्यताएं हैं कि वो अपने घोंसले को पहचान सकते हैं और उड़ान तेजी से भर सकते कीटाणुओं की अपेक्षा। पशुओं में चार योग्यताएं हैं। हजार गऊओं के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। मनुष्य में पांच योग्यताएं हैं ईश्वर की कि वो इस लोक की माँ को तो पहचान लेता है लेकिन परलोक के ज्ञान को भी श्रवण करके धर्म अधर्म को समझ लेता है, शुभ अशुभ को समझ लेता है, पुण्य पाप को समझ लेता है। इसलिए मनुष्य इन सब चार कृतियों से ऊंची कृति है ईश्वर की। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से भी वो लोग श्रेष्ठ हैं जिनके अंतःकरण में भगवत कृपा का अनुभव हो रहा है, श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं। करोड़ों करोड़ों मानने वालों से भी वो श्रेष्ठ हैं जो मानने के बाद भगवान को जानने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। करोड़ों करोड़ों भक्तों से भी वो और एक कदम आगे हैं जो सत्संग करते हैं और भगवत तत्व का ज्ञान रखते हैं। लाखों लाखों भगवत तत्व का ज्ञान रखने वालों से भी वो श्रेष्ठ है जिनको भगवत तत्व का अनुभव करने वाले कोई महापुरुष का दर्शन और सानिध्य मिल जाता है। करोड़ों करोड़ों दर्शनार्थियों में भी वे लोग श्रेष्ठ हैं जो महापुरुषों से दीक्षा शिक्षा लेकर चल पड़ते हैं। इसलिए और कर चलने वालों में भी वे श्रेष्ठ हैं जो पहुंच गए, और पहुंचने वाले से भी वो ऊंचे हैं जो दूसरों को पहुंचाने में सहज सुलभ काम करते रहते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। विकास की परंपरा में कितने जन्मों का, कितने कर्मों का, कितने अभ्यासों का उसके पास खजाना है, तब वो वासुदेव का अनुभव करते हैं, करवाते हैं। ये युग जेट युग है। जैसे खान पान के, यातायात के साधन, समाचार के साधन, पहले तो समाचार भेजने तो कबूतर के गले में डाल दो, कागज बागज बांध बूंद के, कहीं पहुंचे पड़ा हुआ कबूतर, फिर आए तब समाचार। रोटी बनाना है तो चूल्हा सगड़ाओ, कंडे कंडे जलाओ, फू फू करो, तब घंटों भर में हाथ तो लाइटर मारा, जला, रख दिया कुकर, थोड़ी देर के बाद कुकरू को भोजन तैयार। कृष्ण कन्हैया लाल। तो जैसे यातायात के साधन, भोजन पकाने के साधन अथवा समाचार लेने देने के साधन सब इस युग के अनुसार फास्ट करने पड़ते हैं, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के साधन भी सूक्ष्म और फास्ट होंगे तभी काम चलेगा। पहले तो 60,000 वर्ष उम्र थी, थोड़ा करते रहे 50 साल, 100 साल, 200 साल, कोई बात। अभी तो सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ऐसी जिंदगी है, इसमें तो जल्दी काम कर लेना पड़ेगा। तीन बातें तो सब व्यक्तियों को जाननी चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश के सेना अध्यक्ष हो, चाहे इंडिया के सेना अध्यक्ष हो जयराम जी की, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सिंधी साई हो, चाहे पंजाबी भाई हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे पाटीदार हो, चाहे बाटीदार हो, जयराम जी की, ये तीन बातें कृपा करके सबको जानने जैसी है कि मौत जरूर आएगी, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती, एक बात। दूसरी बात, गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। और तीसरी बात, सत्कर्म और सत्संग का सहारा लेकर अपना काम बना ले। तुम पिता होकर पुत्र से निभा लिया, मामा होकर भांजे से निभा लिया, पत्नी होकर पति से निभा लिया, सेठ होकर नौकर से निभा लिया, बॉस होकर असिस्टेंट से निभा लिया, लेकिन जब कर्ता मरता है तो अनाथ हो जाता है। कर्ता मरे, अनाथ हो जाए और कौन से शरीर में उसको प्रकृति धकेल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्ता मरे अनाथ होकर उसके पहले अपने साथ नाथ का संबंध और नाथ की तपस्या का खजाना बना ले, ये तीसरा काम जरूर। कुटुंबी शमशान में छोड़कर आए और अग्नि दान दे दे, उसके पहले कोई सतगुरु तुम्हें भक्ति दान दे दे, ऐसा अवसर मिल जाए तो कितना अच्छा। बाहर की आंख बंद हो जाए, उसके पहले भीतर की आंख खोलने वाले मिल जाए। भीतर की आंख खोलने वाले के द्वार पर जाने पर भी कभी कभी बेईमान मन गड़बड़ कर देता है। तुमने सुना होगा गिरनार का नाम, सौराष्ट्र में गिरनार है, जूनागढ़ के पास गिरनार, मैं तो कई बार उधर गया हूँ। गिरनार की तलेटी में एक आश्रम था, थोड़ी वैदिक काल की बात है, पुरानी बात है। गिरनार के उस आश्रम में पहुंचे हुए संत थे, उनके दर्शन करके लोगों को बड़ा शांति आनंद मिलता था, दो वचन सुनकर लोगों को बड़ा कुछ भक्ति रस पाप मिलता था। वो जमाना चांदी के रुपयों का था, सोने की गिन्नियों का था। बाबा जी के वहां धर जाते मटकों में, बड़ी बड़ी नादियों में संपत्ति पड़ी रहती। आया गया, साधु संत की सेवा होती, भक्तों का भोजन होता, बस कोई दे जाता है, कोई खा जाता है, चलता रहता था। बाबा जी वृद्ध हुए, बाबा जी ने सोचा कि आश्रम की इतनी सारी संपत्ति, कोई योग्य व्यक्ति मिले तो उसको जीते जी गद्दी का तिलक कर दूं, न जाने फिर लोफरों के हाथ में धन दान का माल चला जाए। किसी लड़के को बाबा जी ने पसंद किया और फिर अपने मित्र संत से कहा कि मैं इसको गद्दी दे दूंगा। उस लड़के को कुछ दिनों में पता चल गया, लड़का मन में सोच रहा है कि भगवान करे बाबा जी का जल्दी कुछ, बाबा जी का जल्दी कुछ हो जाए फैसला तो मैं महंत हो जाऊं। देखो मन कितना बेईमान है। बाबा जी समझ गए कि इसके मन में इतना पाप और दग आ रहा है। बाबा जी एक रात चलकर उठ के चल दिए। दूसरों को तो पता चल ही गया था कि बाबा के बाद ये गद्दी पे आएगा। दो चार दिन उसने खोजा खोजवाया, अरे गुरुजी चले गए, नाटक किया। बाद में तो उसके जो थे मिलने वाले, उन्होंने उसको गद्दी पे बैठा दिया। भीतर से तो खुश था कि अच्छा हुआ गई बला, और बाहर से जरा रोया धोया जो भी। बाबा जी चले गए, अब दान की अशर्फियां गिनिया, दान का पैसा वो मजे से मालपुए खाने लगा, फांद बढ़ गई। आंख बादाम पिस्ता राय धमा धम। जो उसका थोड़ा बहुत पुण्य था वो दान का माल खाने से पुण्य उसका नष्ट हो गया। अब तो उसको प्रमेह की बीमारी ने पकड़ लिया, अनिद्रा का रोग और रात को भयानक सपने देखे। ऐसे करते करते उसको लकवा मार गया। 6 महीने के अंदर तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। एक दिन उसको हुआ कि मैंने गुरुजी के लिए बुरा सोचा, इसीलिए शायद ऐसा। कोई साधु आ रहे थे, बूढ़े साधुओं को जिमाया। बोला, महाराज गुरुजी थे तो निश्चिंत था, भले गुरु के अनुशासन में रहता था लेकिन बड़ा आनंद रहता था। अब महंत बन गया हूँ, माल तो खूब है लेकिन अंदर में ठन ठन पाल हो गया। अरे बोले, अब तो गुरु को खोज ले, भूल बख्शा ले, और ये दान का पैसा है, लोहे का चना है, इसको अगर कोई गृहस्थी धर्मादे का उघरा के उसका सदुपयोग करता है तो उसका यश बढ़ता है, उसका सत्व बढ़ता है। अगर हड़प करता है तो वो खुद रीबा रीबा के मरता है और 7 पीढ़ी उसकी कंगाल रह जाती। सिद्धपुर में एक व्यक्ति था, उसका भी हमने देखा, खाना खराब हो गया, ऑयल मिल बिक गई, 5,000 खाली समिति में ऐसा वैसा करके एडजस्टमेंट कर दिया। उस समय तो पता नहीं चला क्योंकि वो खजानची था समिति का। बाद में वो बूढ़ा मरा, तब रीबा रीबा के मरा, और उसके छोरे अभी ऑयल मिल भी बिक गई, बंगला भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, अब फुटपाथ पे भटकते। दूसरा भी एक है, विक्रम सीमेंट फैक्ट्री, उस इलाके में मेरा सत्संग हुआ था, वहां किसी व्यक्ति के बारे में सुना हमने, उस बेचारे को पैरालाइज हो गया, उसके बेटे को भी हो गया। जिस हाथ से पर्चियां हैं, फर्जी पर पर्चियां फाड़ी थी, डोनेशन उगराया और रख लिया घर में, थोड़ा 2-5-10 हजार जो भी, बुरी हालत हो जाती। मैं तो ये कहूंगा कि वो आदमी भागशाली को उसको यही सजा मिल गई, नहीं तो 7-7 पीढ़ियां भोगती है। तो जैसे दान का पैसा, गृहस्थी धर्मादे का, भगवान के नाम का, सत्संग के नाम का, धर्मादे का पैसा आड़ा उड़ा करता है तो गृहस्थी को भोगना पड़ता है, ऐसे जो देता है या सत्कर्म करता है तो उसको भी फल तो अच्छा भी तो मिलता है। बेटा जा तू अपने गुरु को खोज। बोले, बाबा जी मैं अब पैरालाइज हो गई, गुरु को कैसे खोजूंगा। अपने आदमी भेज, चारों तरफ आदमी भेजे, घूमते घामते भटकते 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 आदमियों को पता चला कि बाबा जी तो काशी पहुंच गए। बाबा जी को कहा कि तुम्हारा चेले को पैरालाइज हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई, महाराज वो आपको याद कर रहा है, भूल बख्शा रहा है, दया करो, माफी दो ये वो। बाबा जी ने कहा मैं नहीं आता, वो सोने की जो नादी नादी बोलते मिट्टी की कोठी होती है ना काली काली, वो भरी हुई है। बोले उसको ले जाना ऊपर। बोले नहीं बाबा, वो तो माफी चाहता है, आपको चाहता है। बाबा ने कहा उस वो अगर मुझे बुलाना चाहता है तो उसको बोलो कि आश्रम में एक ऐसा पेड़ लगा दे और उसकी ऐसी सिंचाई कर कि उसकी एक डाल काशी पहुंच जाए तो मैं उस डाल पर पैर रख रख के आऊंगा। कहां तो गिरनार, कहां काशी, और पेड़ बो दो और उसकी एक डाल काशी तक पहुंचे, ये तो इम्पॉसिबल। शिष्य ने सुना कि गुरुजी ने तो एकदम रूखा जवाब दे दिया, टाल दिया, अब क्या कर। फिर कोई साधु संत आए, उनसे पूछा कि गुरुजी कहाँ है, वो तो पता चल गया लेकिन गुरुजी रूठ गए। संतों ने कहा देवताओं से गुरु रूठे तो देवताओं की सत्यानाश हो गई, इंद्र भी हार गया बुरी तरह। जिसका गुरु रूठे तो उसका बाकी बचा क्या। तो क्या बात है, क्या चाहते हैं गुरुजी। बोले गुरुजी बोलते हैं कि पेड़ की बुआई, पेड़ बो दो आम का और उसकी ऐसी सिंचाई करो कि उसका एक डाला काशी तक पहुंचे तो फिर मैं आऊंगा तुम्हारे आश्रम। गुरु फकीर ने कहा ठीक है कर दो तुम। बोले कैसे, आम का डाल कैसे पहुंचेगा। बोले मूर्ख देख, तू ऐसा तो अन्न क्षेत्र खोल दे, ऐसा तो कीर्तन सत्संग का आयोजन कर दे कि जो आए दो टुकड़ा खाए, साधु संत उनकी जमात, भगवान का भजन करने वाले लोग, तो ऐसा वो आम का सुंदर रस डाल यश पहुंचेगा कि काशी तक तेरी कीर्ति फैल जाएगी कि गुरुदेव के आश्रम का संचालन उसके शिष्य ने बढ़िया किया है, ऐसा गुरु जी चाहते हैं। अगर ऐसा तू करेगा तो गुरु सुनकर फिर आ जाएंगे। उसने ऐसा किया और गुरु तक ये बातें गई। आखिर गुरु तो दयालु होते हैं, आए और उस शिष्य का कोढ़ भी चला गया और पैरालाइज भी ठीक हो गया। बाद में उसने भगवत भक्ति का महात्मा समझा, सत्संग का बड़ा महात्मा है। कल तुमने सुना था राजा जनक सत्संग सुनता और उसके पितरों का उद्धार हुआ है, अज राजा का भला हुआ है। ये बहुत जन्मों के बाद ऐसी ऊंचाई आती जो सर्वत्र भगवान का अनुभव करने वाला कोई संत मिल जाए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मिले। सुखदेव जी का उपदेश सुनकर परीक्षित राजा को आत्म संतोष हुआ है, आत्म शांति हुई। और परीक्षित को तक्षक नाग में, श्री कृष्ण में और अपनी आत्मा में अभेदता का अनुभव हुआ। 7 दिन के अंदर परीक्षित की मुक्ति कराने वाला ये सत्संग है। राजा जनक को उपदेश देकर आत्म परमात्मा का अनुभव कराने वाला ये सत्संग है। ऋषभ देव हो गए, अजनाब खंड था भारत का नाम। अपने सौ पुत्रों को बुलाकर भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि राज्य वैभव तो है, लेकिन मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं, मनुष्य जन्म तो ध्यान और योग करके आत्म सुख पाने के लिए है। पुत्र पति पत्नी का परिवार का ये भोग तो सुकर योनि में भी मिलता है, इसलिए तुम त्यागमय जीवन जीना, तपस्वी जीवन जीना। ऋषभदेव पूरा राज्यपाट भरत को देकर चल दिए, परमहंसों की चाल से चल दिए। कोई उनकी मजाक उड़ाता है, कोई उनके आगे अधोवायु छोड़ता है, जैसे उन्मत्त हाथी के पीछे मक्खियां बिन बिन आती है, ऐसे मूर्ख लोग उनको पागल समझकर उनकी मस्करी करते। फिर भी भगवान ऋषभदेव अपने चित्त को शुद्ध नहीं करते और वो कनक देश आदि में विचरण करते करते परमहंस की पदवी को प्राप्त हुए। भरत ने अपने राज्य की सुंदर व्यवस्था की, इसलिए इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा राजा भरत के बाद। भरत ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि पशुओं के लिए घास चारा, पक्षियों के लिए भी दाने मिले, ऐसी व्यवस्था की। भरत के राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। उसके पिता के राज्य में एक बार अकाल पड़ा, इंद्र ने मेघों को रोक दिया तो ऋषभदेव ने योग बल से वृष्टि कर दी। ऐसे राजा थे कि देवताओं को भी चैलेंज कर देते थे, ये भारत की परंपरा है। पहले के जमाने में भारत के लाल सोने के बर्तन में भोजन करते थे। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, 1,00,000 आदमी रोज भोजन करे, उसमें 10,000 आदमियों को तो सुवर्ण के बर्तन भेंट किए जाते थे। कुछ साधु संत सोने की थाली कटोरा ले जाते, कुछ साधु ब्राह्मण बोलते असली आत्म हीरा जदे लदो मुँह, आत्म हीरो जग थीरो सवा कसीरो। आत्म हीरा मिल गया तो ये तेरा सोने का ठीकरा कौन संभाले। जैसे जूठी पत्तल छोड़ जाते ऐसे सोने की थालियां कोई साधु संत छोड़ के जाते थे। वो जमाना था भारत का। फिर अफगानिस्तान वाले आए, फलाने आए, हुआ आए, ये आए, ऐसे करते करते सब गड़बड़ी हो गई। फिर फेरी वाला निकलता, देना चाहो तो सोने के टूटे फूटे बर्तन। फिर अफगानिस्तान ने नोचा, उन्होंने नोचा, फिर आवाज बदला, देना चाहो तो सोने चांदी के टूटे फूटे बर्तन। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी खूब शोषण किया हमारा, आवाज बदला, देना चाहो तो तांबे पित्तल के जूने पुराने बर्तन। बाद में तो यहाँ के नोट परदेश स्विट्जरलैंड में गए, अब तो तांबा पीतल भी गया, सोना भी गया, सोना चांदी भी गया। अभी फिर यह आवाज करता है, हम जब छोटे तो ये सुनते थे, देना चाहो तांबे पीतल के जूने पुराने बर्तन। लेकिन हमारे बच्चे क्या सुनते, अपवा हो तो प्लास्टिक ना टूटेला फूटेला चंपल। ये आवाज सुनते हम कहां तो भारत सोने के बर्तनों में भोजन करने वाले भारत के लाल, और कहां तो प्लास्टिक ना टूटेला फूटेला चंपल। अब फिर डंखल आ रहा है, अभी न जाने क्या करेगा। जय राम जी की। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। तो जिनको बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे दुर्लभ महात्मा मिल गए और उनकी बताई हुई साधना से चलते हैं तो उनको संसार का व्यवहार बांध नहीं सकता है, उनको दुख सताता नहीं और सुख आकर्षित नहीं करता। वे समझते कि सुख और दुख ये तो सरोवर के ऊपर की सागर की लहरियां है, सागर की गहराई में तो शांत जल है। सुखी दुखी चिंतित भयभीत होना ये चित्त की मलिन अवस्था है, उपली उपली अवस्था है। गहराई में तो मेरा चैतन्य परमात्मा है जो आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। साध जना मिल हर जस गायो, गुरुवाणी में आया हरि का जस तो गाओ लेकिन साधु संत महात्मा जो पहुंचे हुए संत उनके साथ मिलकर गाओ तो उसका अनंत गुना फल होता है। महाराज आत्मज्ञान के सिवाय तो चाहे कुछ भी मिल जाए कोई माना नहीं रखता। तुमने रामायण की सीरियल देखी होगी, रामायण पढ़ा होगा, भगवान रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होता है। थोड़े दिनों के बाद कौशल्या जी रामचंद्र जी को कहती हैं कि राम मुझे अब अपने आत्म उद्धार के लिए गुरु के आश्रम में जाना है, एकांत जंगल में श्रृंगी आश्रम में। अब कितने श्रृंगी ऋषि हो गए होंगे, कौन से श्रृंगी आश्रम में जाना चाहती होगी वो तो भगवान जाने, लेकिन वर्णन ऐसा आता है। इन कुल मिलाकर कौशल्या जी ये कहती हैं कि मुझे एकांत में जाना है। राम जी कहते हैं कि मां 14 साल में वन में गया, अब तुम अरण्य में जाना चाहती हो। मां मैं राजकाज के भार से जब कभी बोझिला चित्त होगा तो तुम्हारे गोद में आकर सिर रखूंगा, सलाह मिसलत करूंगा, मां की मीठी गोद में मीठी समझ भी पाऊंगा। मां अभी तो तुम्हारी बहुत जरूरत है, उस भारत की अंबानी राम जी कहते कि मां 14 साल में वन में गया, अब तुम अरण्य में जाना चाहती हो। मां मैं राजकाज के भार से जब कभी बोझिला चित्त होगा तो तुम्हारे गोद में आकर सिर रखूंगा, सलाम इसलत करूंगा, मां की मीठी गोद में मीठी समझ भी पाऊंगा। मां अभी तो तुम्हारी बहुत जरूरत है, उस भारत की अम्बा ने क्या सुंदर जवाब दिया है। माता हो तो ऐसी समझदार हो। राम तुम राजा राम भी हो, मेरे पुत्र राम भी हो, भगवान राम भी हो, तुम तो मोह मिटाने की बात कर रहे हो, तो तुम कैसी मोह की बात कर रहे हो। बच्चा पैदा होता है नादानी से समझता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जवान होता है तो मुझे शादी करना है ये करना है वो करना है, और बूढ़ा होता है तो समझता है कि मेरी इसको जरूरत है उसको जरूरत है, लेकिन इस जीव को अपने आत्मा के कल्याण की भी तो जरूरत है। ये सब मोह है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, अथवा मेरा इसको मेरी इसको आवश्यकता है इसको आवश्यकता है। हकीकत में जीवात्मा को तो अपने परमात्मा प्राप्ति की ही जरूरत है। राम जैसा बेटा, अयोध्या जैसा राज्य और राजमाता जैसा पद छोड़कर कौशल्या अम्बा एकांत में तपस्या करने जाती है। कैकेयी और सुमित्रा को भी रामचंद्र जी उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए रथ में भेजते हैं और एकांत में भजन। अब कौशल्या जैसी सुविधाएं छोड़कर भी आत्म कल्याण करने वाली नारियों ने आत्म कल्याण कर लिया। राम जी की मां होने पर भी उसको आत्म राम में गोता मारना पड़ा। ये बहु नाम जन्म नाम अंते की कितनी बड़ी भारी महिमा है कि भगवान की मां होने के बाद भी उसको संत का संग तो करना पड़ा और साधना करनी पड़ी। ऐसे ही प्रचेताओं को भगवान शिव भी मिले, भगवान विष्णु भी मिले, बाद में प्रचेताओं को आत्म शांति के लिए नारद जी के सत्संग की जरूरत पड़ी। श्री कृष्ण की मुलाकात युधिष्ठर को हुई, अंत में युधिष्ठर को सत्संग की जरूरत पड़ी और सत्संग भीष्म पितामह ने सुनाया, तब युधिष्ठर को आत्म शांति मिली। तो ये सत्संग की बहुत बड़ी भारी महिमा है। मथुरा से वृंदावन जा रही थी फियाट कार, दो लड़के बैठे थे ड्राइवर के पास आगे। पीछे एक महिला और एक अनाथ बालक जो झोपड़पट्टी की माई बालक को जन्म देकर मर गई। दयालु माई ने अपना बेटा समझ के उसको गोद में ले लिया। सामने से टैंकर आया और यहां से गाड़ी गई। ऐसा तो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी तो बिस्किट बन गई, ड्राइवर और महिला के दो बच्चे भी मर गए। महिला को भी फ्रैक्चर हुआ, लेकिन वो जो झोपड़पट्टी का अनाथ बालक था उसको एक खरोद भी नहीं आई। माई हॉस्पिटल में गई, अपना हार्ट वैद्य से जो कुछ करना कराना था, फिर घर में ट्रीटमेंट हो रही है। बैसाखी पे बिचारी चल रही है। गुरुजी पसार हुए, उन्होंने सुना था कि माई अपनी सत्संगी थी लड़की 20-35-30 साल की, ऐसा उसके साथ हो गया जुर्म। बाबा जी गए, बाबा जी के साथ दूसरे भी बाबा लोग थे। वो लड़की ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं तो उठी बैसाखी पे मुश्किल से भी, लेकिन हंसते हंसते आई आई गुरुजी बैठे साइए करोगे, चाय पीना, बिस्किट खाना, खदो खाना, ये खाई नहीं। गुरुजी के साथ जो साधु थे उनको लगा कि इसका तो दो बेटा मर गया, ड्राइवर मर गया, खुद फ्रैक्चर हुआ और फिर भी इतनी खुश रह रही है। साधुओं को जरा होता है कुछ प्रश्न उत्तर करने की, थोड़ी साधक की परीक्षा करने की, कुछ छेड़खानी करने की, आध्यात्मिक ऐसी रुचि होती है। वो गुरुजी के साथ जो साधु था उसने कहा कि भाई अब तो बिस्किट बिस्किट चाय वाय का फंदा छोड़, तू तो सत्संगी है, भगवान को मानती है, दान पुण्य करती है, गुरु की दीक्षा लिया है और तेरे दो बेटे मर गए, तेरा ड्राइवर मर गया, इस अनाथ बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ और तेरे को वरी तीन तीन फ्रैक्चर हुआ है नहीं, तो ये क्या धर्म का फल? ये धर्म धर्म करे वो धाड़ पड़े, कसाई के वहां कुशलता, जो लुचाई से जीते उनको तो कुछ नहीं होता और तेरे जैसी सत्संगी को ये हुआ, तो फिर सत्संग का फल क्या, दान पुण्य का फल क्या? ये तो कल युग आ गया, अच्छा काम करने जाओ तो ये हाल, तू तो अच्छा जीवन जीती है, फिर तेरे को एक्सीडेंट का इतना दुख क्यों सहना पड़ा? वो बोलते महाराज मेरे को दुख कहां हुआ, दुख हुआ शरीर को, प्रारब्ध था बेटों का ऐसे ही मृत्यु का, वो चले गए, अगर सत्संग नहीं सुनती तो वो छोरों के पीछे मैं पागल होकर मर जाती। महाराज सत्संग ने मेरे को तीव्र प्रारब्ध का कष्ट भी सहने की शक्ति तो सत्संग से मिली। अगर बेटे मर गए हैं तो उनकी याद आती है तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारा शरीर मरा, तुम्हारा आत्मा अमर है, और आत्मा हजारों बार शरीर मिलता है मर जाता है फिर भी आत्मा नहीं मरता है। पुत्र तुम आत्मा हो और परमात्मा के हो, उसी से मिलना, मेरे जैसी माताओं के गर्भों में बार बार मत भटकना, तुम अमर हो जाना पुत्रो। ये ज्ञान भी तो महाराज सत्संग से मिला। तीन फ्रैक्चर हो गए तो शरीर को पीड़ा हो रही थी और सत्संग की याद आ रही थी तो पीड़ा भी मजे से सह रही हूँ, अभी तो सब सेट हो गया महाराज, अब तो पट्टा खोलने के दिन है, अब इतनी पीड़ा नहीं। और ये सत्संग का फल है कि मैंने अपना कठोर प्रारब्ध भी हंसते हंसते भोग लिया। महाराज अगर सत्संग नहीं होता तो मैं कहाँ होती। सत्संग सुमंत्र करके तुम्हारा व्यवहार नहीं उड़ा देगा, लेकिन सत्संग में जो सामान्य दुख आने वाला है वो सामान्य सत्कर्म से दूर हो जाएगा, जो विशेष दुख आने वाला है वो विशेष सत्कर्म और पुण्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो तीव्र प्रारब्ध है वो तो महाराज भोगना ही पड़ता है, लेकिन सत्संगी को उस भोग का भी ज्यादा रंज नहीं होता है। संसारी रो रो कर उस दुख को बढ़ा देता है और सत्संगी तेरा भाणा मीठा लागे करके उस दुख को छोटा बना लेता है और सुख को बड़ा बना लेता है। ये सत्संग की तो महिमा है। भगवान राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, नल राजा और दमयंती जैसों को भी कष्ट सहना पड़ा, राम के बाप को भी संसार ने तो दुख दिया। महाराज संसार तो दुखालय है गुरुजी, जहां औषधियां रहती उसे औषधालय, जहां पुस्तक होते हैं वहां पुस्तकालय, जहाँ दूध खूब होता है ना वहाँ दुग्धालय कहा जाता है। ऐसे संसार में दुख ही दुख रहता है, इसलिए शास्त्र ने कहा दुखालय। तन धरिया कोई न सुखिया, देखा जो देखा सो दुखिया रे। ऐसे दुखालय में भी महाराज बैसाखी पे लूली लंगड़ी की जैसी चल रही हूँ फिर भी हृदय में महाराज मुस्कान है। ये सत्संग की महिमा है, नहीं तो आदमी आते भी रोता है, जाते भी रोता है, रोने का वक्त नहीं होता तब भी रोता है। दुखों में हंसना सिखाता ये सत्संग की महिमा है, कष्टों में भी आनंद से भर दे ये सत्संग की महिमा है। महाराज महाराज ने कहा हम तो महाराज वेश में महाराज हैं, लेकिन तू तो गृहस्थी नारी वेश में नारायणी है। देवी तू धन्य है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवानं माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। दूसरा भगवत गीता का एक श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे। य इमं परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं
य इमं परमं गुह्यं
मद्भक्तेष्वभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्यसंशयः। जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को देता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त हो जाता है। जो गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में साझीदार होता है, गीता सुनाने वाला संतों का मुकुट मणि है, भक्त समुदाय रूपी बगीचे में वसंत बनकर वो आता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा गीता का गुड ज्ञान सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भक्ति पूर्वक दूसरों को इस भक्ति रस का प्रसाद बांटता है, ऐसा जो मेरा भक्त है, हे उद्धव, हे अर्जुन, मुझे कभी कभार वैकुंठ भी प्रिय नहीं होता, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और मेरे भक्त होते वहाँ तो उनके हृदय में ज्ञान रूप से, शांति रूप से, आनंद रूप से, समता के रूप से मैं प्रकट हो जाता हूँ। औधव, मरने के बाद कोई विरला व्यक्ति वैकुंठ में आता है। हे औधव, कोई जोगी जति साधारण को जल वृष्टि न्याय न सबको पुण्य और शांति और आनंद मिलने लगता है। तुमको बलि राजा की कथा मैंने सुनाई थी यहाँ, कहाँ तो एक छोटा सा शराबी और कहाँ सत्संग की जगह पर पड़ा रहा। तीन घड़ी वो स्वर्ग का वैभव तीन घड़ी के लिए मिला और वहां भी उसका सत्कर्म ऐसा फला तो दूसरे जन्म में राजा बलि हुआ और इतना दानवीर हुआ कि भगवान को वामन रूप लेकर उसके द्वार पे आना पड़ा और लक्ष्मी जी को उसके महल में रहकर वामन की छुट्टी कराने के लिए भी आना पड़ा। कहां तो एक साधारण शराबी आदमी और सत्संग की जगह और पवित्र जगह पर बैठने से तीन घड़ी का उसका पुण्य ऐसा बढ़ा कि महाबली राजा बन गया। सत्संग छोटे से छोटे व्यक्ति को महान पद में प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि व्यास जी ने पूछा नारद से कि तुम इतने महान संत कैसे हुए। नारद जी कहते हैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था और दासी भी बहुत साधारण दासी, कोई चाहे किसी भी काम पे रख दे उसको, फुटकर काम करने वाली, पक्की नौकरी भी नहीं, टेम्पररी नौकरी भी नहीं, परचूरन काम करने वाली दासी, किसी ने दो आने दे दिए, चार आने दे दिए, ऐसा करके वो काम करवाने वाले लोग, बुहारी कराने वाले। गांव में संत आए, किसी सेठ ब्राह्मण ने सोचा कि हम संतों की सेवा नहीं कर सकते तो चलो हमारे तरफ से दासी की नियुक्ति कर देते। मेरी माँ की जहाँ नियुक्ति हुई मैं भी बालक होने के कारण वहां जाता। मैं बालक होते हुए भी चंचलता का अभाव था, मैं संयम से सेवा भी करता, सत्संग सुनता, मैं कम बोलता था और जो मुझे व्रत मिल जाता वो मैं करता था। मैं एक टक भगवान को और संत भगवान को देखते देखते कथा सुनता था, मुझे कथा सुनने का पुण्य बहुत मिला, मेरे हृदय की ग्रंथियां खुलने लगी और मुझे अष्ट सात्विक भाव प्राप्त हुए। कभी आंखों से आंसू झरे तो कभी हृदय गीला हो जाए तो कभी शरीर में कुछ चमचमारी पैदा हो, इस प्रकार के अष्ट सात्विक भावों में से कभी कुछ अनुभव होने लगा। महात्मा लोग जब कथा करके जा रहे थे तो मेरा दिल हुआ उनके साथ जाने का, लेकिन मेरी उम्र केवल 5-7 वर्ष की थी, महात्मा मुझे साथ नहीं ले गए, तू छोटा है। मेरी माँ मुझे बहुत मोह से देखती थी, भजन करने में भी रुकावट डालती थी। मैंने महात्मा को कहा, महात्मा ने कहा जो भजन करता है उसको रुकावट डालने से पाप लगता है, तेरी माँ का स्वभाव भगवान बदल देंगे, नहीं तो अपने चरणों में बुला लेंगे। मेरी माँ को सांप ने काटा, कुछ समय के बाद भगवान के चरणों में पहुंच गई। फिर तो मैं घर छोड़कर उत्तर दिशा के तरफ चल पड़ा। कई मैंने बयाबान देखे, कई बस्तियां देखी, कई हीन कर्म करते देखे तो कई सत्कर्म करते देखे। बड़े बड़े अरण्य और जंगलों को लांघता गया, कहीं कुरकट देखे तो कहीं मद्दोन्मत्त मदारियों के उस जाल में फंसने वाले जीवों को देखा, तो कहीं कुछ ऐसे करते करते उत्तर दिशा सरोवर के किनारे में पहुंचा। खूब थका मांदा था, सरोवर में स्नान किया। फिर मैं पेड़ के नीचे बैठा और गुरु ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं जाप करते करते ध्यानस्थ हो गया। मुझे प्रकाश पुंज दिखा, उस प्रकाश पुंज में भगवान नारायण की आकृति दिखी और भगवान नारायण ने कहा कि पुत्र बड़ा खेद है कि इस जन्म में मैं तुझे नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि तेरे कर्म अभी कुछ बाकी है, तू लगा रहे, अगले जन्म में तू मेरा खास ऋषि होगा और लोक लोकांतर में तेरी गति अबाधित होगी, तू दूसरों को भक्ति देने वाला मेरा प्रिय पुत्र होगा। बस कहां तुम्हें दासी का पुत्र और मुझे सत्संग मिला। मेरे जीवन के 3 तार, एक तो सत्संग मिला, दूसरा सद्गुरु की दीक्षा शिक्षा मिली और तीसरा भगवान में मेरी दृढ़ भक्ति हुई। कहां दासी का पुत्र और कहां देव ऋषि नारद बन गया। छोटे से छोटा आदमी हो, उसके जीवन में 3 बातें हों तो बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। किसी गृहस्थी ने अपने एक बेटे को गुरुजी को अर्पण कर दिया, 5-7 साल का। गुरुजी एकांत में रहते थे, बेटा 18 साल का हो गया। गुरुजी ने ध्यान भजन ये वो सिखाया, सब सेवा करता था। गुरुजी ने कहा, बेटा छोटे से छोटा आदमी में 4 बातें हो तो महान हो सकता है, 3 बातें तुम मैंने भर दी। एक बात भगवान का ध्यान, दूसरी बात शास्त्र का ज्ञान, तीसरी बात साधु पुरुष का संग और चौथी बात देशारटन की। देशारटन की बात बाकी है, इसलिए तू बेटा जा, कुंभ का मेला है, जा यात्रा करके आ, जहाँ भूख लगे भिक्षा करके खा लेना, जहाँ आराम करने की कोई मंदिर का चौतरा चबूतरा मिले, देरी मिले, आराम कर लेना। कोई चीज को देखे तो उसको पूछ लेना क्या है कैसा है, क्योंकि तुझे लौकिक ज्ञान नहीं है बेटा, तू बचपन से जंगल में आश्रम में रहता। ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा लेकर चला। 1-2 गांव लांघते लांघते एक दिन उसने क्या देखा कि कोई बारात जा रही। उस ब्रह्मचारी ने तो पहली बार बारात देखा, शोर गुल बाजे ताजे लग रहे हैं, बज रहे हैं। बोले, किसी से पूछा ये क्या है, लोगों ने बोला ये बारात है। बोले, बारात की बारात का मतलब क्या होता है। बोले, महाराज तुम एकदम महाराज हो क्या। बोले, हाँ भाई मैं तो 5 साल का हूँ, जंगल में था, मुझे कोई खबर नहीं, बताओ बारात का मतलब। बोले, शादी शादी। बोले, शादी क्या होता है। दूसरे जवान लड़के ने कहा, वो जो घोड़े पे बैठा है ना वो दूल्हा है और सब बाराती है, इसलिए इसको बारात बोलते हैं, और वो दूल्हा जाएगा जहाँ मंगनी हुई उस लड़की के साथ फेरे फिरेगा। बोले, फेरे क्यों फिरेगा। बोले, शादी करेगा। बोले, शादी का मतलब। तीसरे छोरे ने कहा, जो ओपन माइंड था, जरा खुले मुंह का था, बोले शादी वो उम्र लायक 18-20 साल की लड़की होगी, ये 20-22 साल का लड़का है, शादी करके फेरे फिर के उनका आपस में हस्तमेलाप होगा। तो बोले, हस्तमेलाप। बोले, महाराज तुम एकदम महाराज हो, जयराम जी, हस्तमेलाप करके वो अपने घर में लाएगा। बोले, अपने घर में लाएगा। फिर एक छोरे ने कहा, महाराज अपने घर में लाएगा, जुआनी है, एक ही बिस्तर पे आराम करेंगे, एक दूसरे से मस्ती करेंगे, वो उसको कोनी मारेगा, वो उसको बोलेगा थोड़ा हटो, ये सब ऐसे ही है महाराज, ये सब जवानी की गड़बड़ है। महाराज ने सुन लिया, भिक्षा मांग कर गांव से खाई। गांव के बाहर जो वट वृक्ष था, थोड़ा चबूतरा था, पुरानी डेरी थी, मंदिर था, एक छोटा सा कुआ बावड़ी थी, महाराज छाती पे हाथ रख के सो गए, छाती पे हाथ रख के सीधे सो जाने से तो वैसे ही स्वप्न आता है। महाराज ने जो सुन रखा था उसकी स्वप्ने स्वप्ने में शादी हो गई। जयराम जी की महाराज ने शादी कर ली, वो बेचारा ब्रह्मचारी 18 साल का, बढ़िया बढ़िया बस कपड़े, बढ़िया श्रीखंड, बढ़िया वो सब। शादी का अनुभव क्या जो किया, फिर वो साथ में बिस्तर पे सोया सपने सपने में, तो सुन रखा था कोनी मारेंगे, मस्ती करेंगे, हटो ये सब। तो लगी कोनी, जरा हटो, तो बेचारा सीधा साधा दो बाहुड़ी ने गिरा। तो पास में दोपहर के समय जो लोग सोए थे उन्होंने देखा, रे वो महाराज पड़ियो, रे अरे महाराज बापड़ो पड़ियो, महाराज बापड़ो पड़ियो, बापड़ो महाराज पड़ियो पड़ियो। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने अपने पटके खोले, उसका रस्सा वस्सा बनाया, जोता वोता, और महाराज को दिया। बोले आ जाओ महाराज, लग गया तो नहीं? बोले नहीं, मेरे आश्रम में ज्यादा शक्कर नहीं खाई जाती और नमक नहीं खाया जाता है, तो ज्यादा नमक और शक्कर खाने से बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है। हमारे आश्रम में शक्कर और नमक बहुत कम उपयोग होता है, और मैं सादगी से सदाचारी रहता हूँ, इसलिए मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मेरा कोई हड्डी पसली टूटी नहीं है। तो महाराज आ जाओ, ठंडे कलेजे से क्या बात कर रहे हैं, बारे आओ ने। बोले बारे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैंने तो सपने में 5 मिनट में शादी किया सपने की, और मैं कुआं में पड़ा हूँ। जिसने सचमुच किया वो कहाँ गया, वो बेले बताओ जरा। जिसने सचमुच बारात लेकर शादी की, सच्ची किया, उसका क्या हाल है? मैंने तो सपने में किया तो कुएं में पड़ा हूँ, और उसने सचमुच किया वो कहाँ है, जरा उसका खबर बताओ। लोगों ने कहा उसने सचमुच किया है, अगर उसको गुरु मिला और सत्संग मिला तो भवसागर से तर सकता है, नहीं तो तू तो छोटे से कुएं में पड़ा है, वो तो 84 लाख जन्मों के माता के कुओं में पड़ेगा फिर भी ठिकाना नहीं। अगर शादी करता और सत्संग नहीं करता तो कौन से कुएं में पड़ेगा? महाराज हम नहीं कह सकते हैं, तुम अभी बाहर आ जाओ। शास्त्र कहता है ते सभाग्या मनुष्येषु उत्से सभाग्या, ते सभाग्या मनुष्येषु ते सभाग्या, कृतार्था नृपनिश्चय कृतार्था नृपनिश्चय, सुमरन्ति समार्यन्ति सुमरन्ति समार्यन्ति, हरिर्नाम कलियुगे हरिर्नाम। वे भागशाली हैं, पुण्य कर्मा है, जो हरि नाम का स्मरण करते हैं, दूसरों को करवाते हैं, वे सचमुच में भागशाली हैं। दोपहर की कथा में मैंने बताया था सिंपल एवन स्टॉक्स कोटागढ़ हिमाचल प्रदेश में कई बिचारे अनजान गरीबों को उसने कृष्ण की भक्ति से राम की भक्ति से वंचित करके क्रॉस गले में लटका दिया था। उसका हौसला बुलंद हो गया। गर्मी के दिनों में सत्यानंद सरस्वती मद्रास से कोई संत आए थे एकांत वास करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उस कोटागढ़ इलाके में। एवन स्टॉक्स ने सोचा कि ये बुढ़े साधु को भी अगर मैं ईसाईत की महिमा बताकर अगर ईसाई बना दूं तो इनके सारे चेले हमारे धर्म में आ जाएंगे। एवन स्टॉक्स उनका गुरु बनने को गया, लेकिन गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। महात्मा से उसने बातें की, महात्मा ने उसकी सारी बड़ाइयां सुन ली। फिर महात्मा ने कहा मेरी बात सुन, तुम्हारे जीसस महात्मा थे, सज्जन थे, अच्छा है, वो अपने को ईश्वर का पुत्र बोलते हैं, जयराम जी की खुद अपने को ईश्वर का पुत्र बोलते हैं, और तुम ऐसी बेवकूफी करते हो, तोता बेचने वाला। एक आदमी तोते ले आया, तोते के बच्चे भी थे, तोता भी था। किसी ने कहा कि ये तोता कितने का? बोले तोता 5 रुपए का। ये तोते का बच्चा कितने का? बोले तोते का बच्चा 10 रुपए का। बोले क्यों? बोले ये तोता भी है, तोते का बच्चा भी है, इसलिए 10 रुपया। ये उल्लू भी है, उल्लू का बच्चा भी है, इसलिए इसका 15 रुपया। जयराम जी की ये तो बेहूदी बात हुई। ऐसे ही तुम बोलते हो, जीसस खुद बोलते मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तुम भी बोलते हो ईश्वर के पुत्र थे, और फिर बोलते हो सबसे बड़े भगवान है, ये तो बेहूदी बात हुई। एवन स्टॉक्स को कुछ थोड़ा लाइट हुई, लेकिन जल्दी नहीं माना। महात्मा ने कहा हरि बोलने से ये फायदा होता है, राम बोलने से ये फायदा होता है, प्राणायाम करने से ये फायदा होता है, ध्यान करने से ये फायदा होता है, कीर्तन में ताली बजाने से एक्यूप्रेशर का ये फायदा होता है, और गीता का कुछ कोटेशन ये कुछ बताया। तो सिंपल एवनस्टॉक्स को महात्मा के संपर्क में आते आते कुछ बातें समझ में आने लगी। आखिर नतीजा ये हुआ कि उसको पीस पाने के लिए, शांति पाने के लिए रुचि हो गई कि मैं इसका प्रैक्टिकल करूं। महात्मा के संग में आने से उसको थोड़ा कीर्तन भजन सत्संग का रंग लग गया। सिंपल एवनस्टॉक्स ने अपनी मिशनरियों को लिखा कि तुमने मुझे कहा था कि भारत में लोग गरीब हैं और अपने कल्चर में आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, उनकी गरीबी का कारण कृष्ण को मानते हैं इसलिए गरीब नहीं है, राम को मानते हैं इसलिए गरीब नहीं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसी है इसलिए थोड़ी गरीबी है, बाहर की गरीबी होते हुए भी कृष्ण की भक्ति करने वाले दिल के तो बड़े अमीर हैं, जो हमारे देश में भी दिल के अमीर नहीं मिलते, ऐसे यहाँ है। मुझे मिस गाइड किया गया था, अब मैं मिशनरी से रिजाइन लेता हूँ और स्वामी सत्यानंद सरस्वती की शरण जाता हूँ। सिंपल एवनस्टॉक्स की जगह पर सत्यानंद एवनस्टॉक्स नाम उसका पड़ा और उस सन्यासी बने। उन्होंने प्रायश्चित रूप जिन लोगों को गीता रामायण छुड़वाया था उनसे क्षमा याचना करके उनको फिर भगवान के रास्ते लगाया और हरे कृष्ण हरे राम की धुन मचाई, प्रभात फेरियां निकाली और हिमाचल प्रदेश कोटागढ़ में गीता मंदिर बनाकर कृष्ण की पूजा की और दूसरों से करवाई। जिसको एक बार भी भारतीय संस्कृति की गरिमा का पता चल जाता है वो अपनी भूल स्वीकार करके अपनी नई जिंदगी बिताता है। वे लोग धन भागी हैं जिनको हरि नाम का सत्संग मिलता है, हरि नाम का कीर्तन मिलता है, हरि नाम का रसपान करने का अवसर आता है। अपने जीवन में उफनता हुआ दृढ़ आत्मविश्वास हो, हजार पराजयों के बाद भी सफलता के लिए धगस हो, तो यही सफलताएं मिलती है, लेकिन यही सफलताएं मिलने के बाद फिर विफलताएं में बदल जाती है। जैसे रणजीत सिंह था, 13 साल का लड़का था, पंजाब नरेश का महाशय जी का, एक दिन जौहरी हीरे जवाहरात दिखा रहा राजा को, 13 साल का रणजीत एक हीरा उठाकर बाप को बोलता, पिताजी ये हीरा में अंगूठी में बना के पहनूं तो कैसा लगदा सी। पिता ने कहा धत तेरे की, तू मेरा छोरा रणजीत बेटा, ये साधारण हीरा पहरेगा। जौहरी कहता है कि क्यों महाशय जी, ये साधारण हीरा है, लाख रुपए का हीरा सच्चा हीरा। बोले रणजीत लाख रुपए का थोड़ी हीरा पहरेगा, ये तो मेरा रणजीत है, बढ़िया पहनेगा। जोहरी कहता है कि क्या तुम्हारा रणजीत कोहिनूर हीरा पहनेगा। राजा ने बेटे की पीठ थाप दी, बोले क्यों बेटा कोहिनूर पहनेगा नहीं। बोले हाँ पिताजी, बालक को तो पता भी नहीं कोहिनूर की क्या कीमत होती है। जोहरी ने कहा कोहिनूर कहाँ है अभी राजा साहब, आपको पता है। बोले हाँ अफगानिस्तान में है, लेकिन ये मेरा बेटा, पीठ ठोक दी, रणजीत कोहिनूर पहनेगा। रणजीत को रिपीट कराते, तू कोहिनूर पहनेगा, तू हिम्मत करेगा, सब कुछ हो सकता है, बस भावनाएं भर दी। वही रणजीत सिंह जब राज्याभिषेक हुआ, राजा रणजीत बना और उसको बाप की बात याद थी, उसने लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान में से जीतकर कोहिनूर के हीरा पहन के दिखाया, लेकिन फिर भी वो हीरा अभी तो यूरोप में पहुंच गया। अगर उस जगह पर उसका बाप कहता कि आत्म हीरा पालेगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, तो वो उधर चल पड़ता, तो आत्म हीरा एक बार मिलता है तो फिर नहीं बिछड़ता है। गरीब कंगाल लड़का एक टाइम की रोटी बेचता है और एक टाइम की रोटी खाता है और किताबें पढ़ता है, स्कूल से निकलता है तो बेंच पर पी लिखता है। अमीर लड़कों ने कहा हे मूर्ख हे गरीब, तेरे को पहनने का जूता भी नहीं है, कंतान बांध के आता है बर्फीली जगहों से, तू रोज पी लिखता है बेंच पर, व्हाट ऑफ मीनिंग द पी। उसने छाती ठोक कर कहा पी पी मींस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ओके। लड़कों ने हंसी मजाक किए, वे एकदम पागल है, गरीब भी है मूर्ख भी है, महा वीआईपी कोटा का पागल है। लेकिन उस लड़के ने अपने संकल्प को डटे रखा, वो हजार हजार विघ्न बाधाओं को लांघता गया, वकीलात में असफल गया, चुनाव में असफल गया, फिर लड़ा, ऐसे करते करते एक दिन वो प्रेसिडेंट हो गया अमेरिका का। उसका नाम था इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी अखबारों और टीवियों के द्वारा पता चला कि वो इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में प्रेत होके भटक रहा है। इतना पुरुषार्थ किया लेकिन जगत की नश्वर चीजों के लिए किया, जगत की चीजों के साथ साथ जगदीश्वर के ज्ञान का भी थोड़ा पुरुषार्थ करता तो प्रेसिडेंट पद भी पाता और परम पद भी पा लेता। इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। पुरुषार्थी आदमी तो था लेकिन पुरुषार्थ हुआ बाहर की कुर्सी पे, हृदय के सिंहासन के लिए भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने समय का 10% आत्म उद्धार के लिए जरूर लगाना चाहिए, अपनी आय का 10% धर्म लाभ के लिए, परमार्थ के लिए लगाना चाहिए। इससे इहलोक और परलोक समरता सुधरता है। भगवान कृष्ण की वाणी पाप नाशिनी वाणी है। हरि नाम पाप ताप को निवृत्त करता है। भागवत की कथा सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज की कृपा पाते पाते परीक्षित उस नतीजे पे आए कि देह तो ये केचुली है सांप की ऐसा, और मैं विदेही आत्मा हूँ। सुखदेव जी महाराज ने सिर पर हाथ रखा, अंत समय उनको परम पद की अनुभूति हुई, सत्य का साक्षात्कार हुआ। सुखदेव जी जैसे महापुरुष न मिले तो फिर जो भी संत मिलते हैं, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ऐसे महापुरुष मिले तो बहुत शीघ्र बेड़ा पार हो जाता है। नहीं तो अपने अपने ढंग से भी भगवान की भक्ति करते रहे और सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करे कि हे भगवान, कुटुंबी हमें शमशान में ले जाए उसके पहले हमें तू आत्म शांति में ले चलना। उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए। जीवन की शाम खाते खाते हो जाए, देखते देखते हो जाए, सुनते सुनते हो जाए, यात्रा करते करते हो जाए। गुजरात का मुख्यमंत्री जो बने थे चिमन भाई, बेचारे कई बार आए, मेरे को ऐसा बनना है, मैं क्या भगवान की दया हो गए वो। फिर सरोवर बनाना है, ये करना है, करते करते एकाएक कैसे चलेगा कोई पता नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े गर्व करे सो कवार। कबीर जी ने कहा, कबीरा यह तन जात है, कबीरा यह तन जात है, कबीरा यह तन जात है, कबीरा राख सके तो राख, राख सके तो खाली हाथों वे गए, खाली जिन्हें करोड़ों औलाख, जिन्हें करोड़ों हरी ही ओ यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार,
फुटत न लागे बार,
फटका लागे फूटी पड़े,
फटका लागे फूटी पड़े
गर्व करे वे गवार,
गर्व करे वे गवार।
हरी ही हो
प्यारा नाम। ओम हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम बोलो, ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम, ओम कली काती नारा नाम, ओम पाप का विनाशक नाम, ओम पुण्य का प्यारा नाम, ओम मीरा का सहारा नाम, ओम गौरंग गाए वो ही नाम, पंजाब में नानक बोले ओम, सौराष्ट्र में नानक बोले हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो मैं जानता हूँ, और वो भी जानता है, और तुम भी। जय हो। जय श्री राम, जय जय हरि हरि ओ हरि ओ ओम हरि ओ हरि ओ ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जग तारण, ओम मोह निवारक सब सुख कारक, ओम जो कोई गाए शक्ति पाए, ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम। ब्रह्मा जाए नारद गाए, हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, पवन पवन नाम, हरि 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 हरि।
पावन पावन नाम, हरि हरि। शुद्ध मधुर नाम हरि हरियो,
जो कोई गाए शक्ति पाए
हरि हरियो,
जो कोई गाए मुक्ति पाए
हरि हरियो,
हरियो के रास्ते जा रही है, संसार की गाड़ी धूल उड़ाती है, ये माधुर्य बांटती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि हरि ओ
हरि ओ हरि ओ
हरि ओ तुम्हारी रग रग पावन हो रहे हैं, हिम्मत मस्ती माधुर्य शक्ति हो,
I'm
yeah.